संत नाभादास जी द्वारा लिखी हुई भक्तों की जीवन गाथा भक्तमाल, जिन्हें सरल भाषा में आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे अपने प्रभु जी के परम भक्त अरविंद चौधरी जी।
राधे राधे। राधे राधे। भक्तमाल श्रृंखला में अगला चरित्र निषाद राज गुह का। सभी भक्तों को प्रणाम। श्री राधे राधे। जय श्री हरि। हरि सो जगवस्तु नहीं, प्रेम पंथ सो पंथ, सदगुरु सो सज्जन नहीं, भक्तमाल सो ग्रंथ। श्री राधे। निषाद राज गुह ये श्रृंगबेरपुर के राजा थे और इनके पूर्व जन्म की कथा शिव महापुराण में आती है। कथा इस प्रकार है कि एक बार ये इससे पूर्व जन्म में भी शिकारी थे। शिकार क्या करते थे, पशुओं को मारते थे, उनकी हिंसा करते थे और वो खाने पीने में उन्हीं का इस्तेमाल किया करते थे। तो एक दिन शिवरात्रि का दिन था और शिवरात्रि के दिन ये पूरा दिन जंगल में भटकते रहे। इन्हें कोई भी प्राणी ऐसा नहीं मिला तो भूखा रहे। फिर रात के दिन ये एक विल वृक्ष, बेल के वृक्ष के ऊपर चढ़े हुए थे और वहीं पे ये किनारे पे था कहाँ, जहाँ पर जितने भी जानवर थे वो पानी पीने के लिए आते थे, वहीं पे किसी नदी के किनारे ये वृक्ष था। तो ये वृक्ष में छिपके बैठे हुए थे। वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था, इसको इतना ज्ञान नहीं था। तो जब सुबह का टाइम हुआ, रात्रि बीत रही थी, बीतने का टाइम था रात्रि के, तो इन्होंने क्या किया कि एक हिरण वहाँ पर आई और इन्होंने निशाना लगाया हिरण पे। उनके जो इनके पास में जो भी जो जल होगा किसी, उसमें ये जल लेके आए थे। जब निशाना लगाते थोड़ा जल छलका तो वो शिव जी पे गिरा। कुछ जब बाण इससे निकालते थे, क्योंकि आपने देखा होगा जो बेल का वृक्ष होता है वो बड़ा घने होता है, वो पत्ते बहुत सारे होते हैं, तो जब धनुष इधर उधर किया वो किया तो पत्ते गिरे, बिल्कुल सीधे ही नीचे शिवलिंग था। तो शिवलिंग पे जल भी गिरा, पत्तों से भी अभिषेक हुआ। तो वो भी पूरा दिन व्रत करने के बाद, पूरी रात्रि भूखा रहने के बाद, सुबह ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव का अभिषेक हो रहा है और बिना किसी जाने अज्ञानता में हो रहा है। भगवान शिव का अभिषेक हुआ, बेलपत्र समर्पित हुए तो बहुत सारे पाप नष्ट हुए। पाप नष्ट हुए तो अंदर दया जागृत हुई। सामने हिरण थी, जब इसने वो लगाना शुरू किया हिरण ने भी देख लिया कि ये व्याध जो है मारने वाला है। उसने प्रार्थना करी कि मैं अपने बच्चों को अपनी बहन को सौंप के आती हूँ, तब तक के लिए मुझे छोड़ दीजिए। इसके मन में क्योंकि दया ही, भगवान शिव का अभिषेक हुआ था, उस दया के कारण इसने उसे जाने दिया कि ठीक है तू आ। थोड़ी देर के बाद ही वो गई कि तभी दूसरी हिरण, ये उसकी बहन ही हिरण थी, ये आ पहुँची जल पीने के लिए। ये जैसे ही आई तो इसने फिर वही कार्य इससे हुआ, जल छलका, जब भी हिलाता था वो जल भी गिरता था इसका। और क्योंकि ऐसे ऐसी जगह एक ही जगह पे था कि वो वहीं से जल वहीं सीधे उस पे गिरता था, अपने धनुष और बाण निकालता था, हिलाता था, पत्ते गिरते थे। तो वो लगातार इस बार भी वही जल अभिषेक हुआ, बेलपत्र भगवान पर समर्पित हुए, बचे कुचे का पाप फिर नष्ट हुए इसके। उस हिरण ने भी सेम कहा कि मैं अपने बच्चों को बहन को दे के आती हूँ, आप इंतज़ार करें और विश्वास करें मैं आऊँगी। वो भी चली गई। अभी जो हिरण था जो, वो आया, अभी वो आया, सेम घटना इसके साथ भी हुई। इसने भी कहा तुम जाओ, मैं आता हूँ और मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे हैं उनको मैं दे करके और अपने परिवार से मिलकर मैं आता हूँ और विश्वास कीजिए मैं आऊँगा। उसको भी जाने दिया। अब क्या हुआ, दोनों हिरणी और वो हिरण वो आपस में मिले, उन्होंने देखा अरे हमने तो तीनों वादा करके आगे, बोलो तीनों को चलना पड़ेगा अब। तो वो तीनों, वो साथ में जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बोले हम ही क्या करेंगे जी, के चलो हम भी चलते हैं। तो वो बच्चे भी साथ में आ गए। अब इन्होंने उन सबको आया देख के, फिर इसने बाण चढ़ाए, वही क्रिया फिर हुई भगवान शिव पर जल चढ़ने की। तो ये दया से भर गया, दया जागृत हो गई, पाप नष्ट हो चुके थे। शिवरात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव का अभिषेक और बेलपत्र समर्पित हो रहा है, भगवान की कृपा, और इसके ज्ञान जागृत हुआ, दया के साथ में ज्ञान जागृत हुआ कि ये पशु होकर के अपने वादे को पूरा कर रहे हैं। देखो तो इन्हें मरने का पश्चाताप नहीं है और मैं वध कर रहा हूँ, ऐसे प्राणियों का वध कर रहा हूँ मैं जो मतलब आश्रित नहीं है किसी के। हम तो कुछ और भी काम कर सकते हैं, कहीं और से हम जीविका का साधन चला सकते हैं, लेकिन इनको मार करके हम निरीह प्राणियों को, तो उसे खेद अपने आप पे और उसने उनको सबको जाने दिया कि तुम जाओ, हम आज से ही शिकार करना ही बंद कर देंगे, हम कुछ और कार्य करेंगे अपने पेट पालने के लिए, अपने परिवार को भोजन देने के लिए। इसकी इस त्याग से भगवान शिव प्रकट हो गए, प्रसन्न हुए भगवान और प्रकट हो गए भगवान, और भगवान ने कहा कि तुम वरदान मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इसने कहा भगवान मैं जानता नहीं हूँ भगवान, वरदान मैं क्या मांगू, यही नहीं पता मुझे कि क्या मांगना चाहिए, तो आप ही बता दो प्रभु। तो भगवान ऑइज ऐसे भोलेपन पे भगवान और प्रसन्न हुए। तो अगर कोई भगवान से कुछ मांगता नहीं है ना, तो भगवान और ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, और कोई ये पूछ ले कि क्या मांगना चाहिए भगवान आप ही बता दो, तो भगवान तो फिर वो वस्तु दे देते हैं जो भगवान को स्वयं प्रिय है। ऐसे ही भगवान ने जो अपने नरसिंह भक्त हुए थे ना, नरसिंह जी ने भी यही सेम भगवान शिव के सामने कहा था कि आप ही बता दो क्या मांगना चाहिए, मुझे तो पता नहीं प्रभु। तो यही इसने भी कहा, मुझे तो पता नहीं है भगवान क्या मांगना चाहिए, मैं तो अनपढ़ आदमी गवार, तो आप ही बता दो क्या मांगना चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि तुम्हें भगवान नारायण की भक्ति प्राप्त होगी, और वो भी अविचल भक्ति प्राप्त होगी, और स्वयं भगवान नारायण भगवान श्री राम आपसे मिलेंगे। भगवान राम ने, भगवान शिव जी ने कहा, और मेरे प्रिय तो वही हैं, तो मैंने अपने प्रिय ही तुम्हें दे दिए। और ये भी प्रसन्न हो गया कि चलो भगवान ने मुझे कुछ तो दिया। वो जीवन इसका बीत गया, इसने फिर हिंसा नहीं की, कोई शिकार नहीं किया। वो जीवन बीतने के बाद ये अभी श्रृंगवेरपुर में पैदा हुआ है। इसके जो पिता हैं वो दशरथ जी के मित्र हैं, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी हैं, दशरथ जी के मित्र हैं इसके गुहू निषादराज गुहू के पिताजी। तो निषादराज के पिताजी अभी दशरथ जी से मिल के आए हैं, और समाचार मिला है वहाँ पे भगवान श्री राम जी का जन्म हो गया है, चारों बालक जन्मे हैं। तो वो वहाँ पे जो भी अपना बधाई देने गए थे, कुछ उपहार दे के आए उनको दशरथ जी को, और उन्होंने बदले में बहुत सारे ढेरों इनको उपहार दिए। ये जब आए तो इन्होंने अपने बच्चे निषाद गुहू को बताया कि बालक हैं दशरथ जी के, बड़े वाले बालक भगवान राम, उनसे दृष्टि नहीं हटती, वो इतने सुंदर हैं। तो इनका मन ललचा गया कि मुझे भी उनको देखना है। तो ऐसे ही ये टालते रहे, और कई वर्ष व्यतीत हो गए कि भगवान के ठीक है जाएंगे। अब इनके पिताजी वृद्ध हो चले थे, तो एक जब इन्होंने बहुत कई साल बीत गए तो अवसर आया, शुभ अवसर आया, ये भी कई साल के हो गए थे कि भाई हमें भगवान के दर्शन के लिए जाना है। तो इन्होंने मृग चर्म की, मतलब हिरण के खाल से बनी हुई पहनी पहनने के लिए, भगवान के पैरों में पहनने के लिए चारों राजकुमारों के लिए वो बनवाई, कुछ फल लिए, और ये ले जाके कुछ अपने उनके साथ में जो आसपास के लोग थे उनके साथ में ये अयोध्या जी को चले गए। अयोध्या जी पहुंचने के बाद इन्होंने पहले सरयू जी में स्नान किया कि तभी जाएंगे भाई राजकुमारों के दर्शन करने। तो ये अपना सामान रख के स्नान कर रहे थे कि तभी दिखाई दिए कि चार राजकुमार भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न, भरत जी, वो चारों ने इनका सामान उठा लिया है, जो पहनी थी वो पहन ली है, और ये फल खा रहे हैं इनके। ये मन से तो इतने सुंदर लग रहे हैं, इनको देख के मन कर रहा है कि ये खाते रहें और पहन ले जो भी हमारा सामान है, पर वैसे ये बाहर से दिखावटी में कह रहे, अरे ये तुम राजकुमार के लिए लाए थे, तुम लोग कौन हो भाई, ऐसे क्यों ले रहे हो इन सामान को। बेचारे ज़्यादा ज़ोर से बोल भी नहीं रहे, पर उन्होंने वो ले लिया। ये बाहर निकल के नहा के आए, उनसे मिले, रहे भाई बता तो दो कौन है ये तुम राजकुमारों के लिए लाए हैं। तो भगवान हंसे और उन्होंने कहा हम ही हैं वो जिनके लिए लाए हो। तो ये चरणों में गिर गए उनके, इतने सुंदर, और भगवान ने इन्हें गले से लगाया, हृदय से लगाया। अच्छा, अब भगवान इन्हें ले गए दशरथ जी के पास लेके गए। चारों राजकुमारों की प्रसन्नता मुख पर दिखाई दे रही थी कि अपने नई सखा से मिलकर, तो दशरथ जी ने इनको छाती से वैसे ही लगाया जैसे अपने पुत्रों को लगाते थे, अपनी गोद में बिठाया गुहू को, और इनको कहा कि ये देख करके कि हमारे राजकुमार को बड़ा अच्छा लग रहा है इनका संग, कि भाई तुम कुछ दिन यहीं रुक जाओ। वैसे तो ये रुकेंगे नहीं, इनको कहा कि तुम जो धनुष बाण की विद्या है तुम्हें वो हमारे राजकुमार को भी सिखाओ, तो ये इस बहाने से रुक जाएंगे। और वही हुआ, धनुष विद्या ही सिखाने लगे उनको, और ये बहुत दिन तक राजमहल में रहे। एक बार का प्रसंग है कि सभी राजकुमार बाहर वन में खेलने गए हुए थे, निषाद राज गुहू भी थे साथ में। तो भगवान श्री राम जी ने कहा कि भाई आज प्रथम बाण कोई भी आएगा ना तो संधान मैं करूँगा, सामने कोई भी आए तो उस पर प्रथम बाण मैं चलाऊँगा। तो उसी समय क्या हुआ कि और अगर किसी ने मेरे से पहले बाण चला दिया तो उसको मैं महाराज जी से कह के दंड दिलवाऊंगा, और वो प्राण दंड भी हो सकता है, आप ध्यान रखना। तो कोई भी मेरे से पहले बाण ना संधान ना करे, वही हुआ कि सब लोग पीछे हट गए और भगवान राम ही आगे आगे बाण लेकर चल रहे थे। पर देखा तभी कि सामने से एक सिंह आया, शेर आया, और वो भगवान पे टूटने ही टूट पड़ने वाला है। वो भगवान पे सारे तीनों राजकुमार तो पीछे हट गए कि भगवान राम ने भी मना किया है, लेकिन निषाद राज ने सोचा कि मेरे प्राण भी जाएं अगर दंड मिलने में कुछ नहीं, लेकिन मैं राम जी को कुछ नहीं होने दूंगा। और इन्होंने अपना बाण चलाया, बाण उसके यहाँ पे लगा और ढेर हो गया, शेर ढेर हो गया। तो लेकिन ये खुश हुआ कि मुझे भले ही दंड मिल जाए पर राम सुरक्षित है। राम ने इन्हें हृदय से लगा। ये सारी घटना उन्होंने दशरथ जी को बताई। दशरथ जी ने तो इनको और सीने से लगा लिया कि तुमने किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करी और उसके बाद भी तुमने संधान किया है, तुम भगवान से कितना प्यार करते हो, यानी राम जी से तुम कितना प्यार करते हो। अब दशरथ जी ने इनको घोषणा कर दी कि तुम सरंगवीरपुर के राजा तुम हो। निषाद राज को वहाँ का राज्य दे दिया, सब निषादों का इनको राजा बना दिया दशरथ जी ने। तो ये निषाद राज जी हैं। जब भगवान श्री राम जी, अच्छा ये गए भगवान राम जी के विवाह में भी ये गए थे और वहाँ की मिठाई ने बहुत पसंद आई थी, वहाँ का खाना, उसका ये प्रसंग याद करते हैं। तब जब भगवान श्री राम जी को वनवास हो जाता है और वनवास के समय जब ये सीता जी की और लक्ष्मण जी के साथ में अयोध्या छोड़ के जब ये श्रृंगवीरपुर की तरफ बढ़ चले हैं तो ये भगवान को लाने जाते हैं, भगवान को लेके आते हैं अपनी कुटिया में और उनसे कहते हैं कि आप हमारे राज्य में रहो। भगवान कह देते हैं कि निराज्य तो हम अपना त्याग आए हैं, भगवान ने हमारे पिताजी ने हमें वनवास दिया है तो वन में ही रह सकते हैं, हम राज्य में नहीं जाएंगे। तो वन में ही इनको रुकाया था। तो वहाँ वो सीता जी से बताते हैं कि हमें आपके घर की बड़ी याद आती है कि जो आप हमारे आपके यहाँ हमने मिठाई खाई है, हमारा पेट भर गया था लेकिन मन अभी तक नहीं भरा है। सब लोग हंसते हैं अच्छे से, रात में भगवान सो जाते हैं तो लक्ष्मण जी जागे हुए हैं और निषाद जी, और भगवान को सोता हुआ निहार रहे हैं और निषाद जी रो रहे हैं उन्हें देख के, हाय क्या छवि है इनकी, मतलब पूरा सब कुछ लुटा दे इनकी छवि पर, भगवान कैसे मनोहर लग रहे हैं सोते हुए। वो लक्ष्मण जी से कहते हैं, हाय लक्ष्मण क्या अपराध है, ये क्यों मिला है वनवास, इसके बदले मुझे दे दो ना तुम सजा, इन भगवान को, इतने कोमल भगवान कैसे वन में रहेंगे। लक्ष्मण कहते हैं कि ये प्रारब्धवश होता है, ये जो भी हुआ है वो ईश्वर इच्छा है, इसमें आप कुछ नहीं, और जो हो रहा है उसे होने दो। अगले दिन यहाँ से चलते हैं तो निषाद राज भी भगवान के साथ चलते हैं। इन्हें ये बहुत मना करते हैं भगवान पर, ये बोलते हैं नहीं मुझे भले ही 4-5 दिन अपने साथ रख लो, मुझे इतनी सेवा तो दे दो। खैर ये 4 दिन तक अपने साथ रखते हैं इनको, फिर आगे से विदा करते हैं। विदा होते हुए ऐसा लगता है निषाद राज को जैसे इनके प्राण छूट गए हैं, भगवान राम के बिना इनके प्राण तड़प उठे हैं। और भगवान राम चले जाते हैं और इनकी अश्रुधार, इनकी बहनी शुरू हो जाती हैं और ये रोए जा रहे हैं कि हमारा जीवन कैसे कटेगा, भगवान वन में कैसे रहेंगे, वो कोमल भगवान, हाय वन में तो हम तो वन में रह लें क्योंकि वन में पले बढ़े, वो राजकुमार वन में कैसे रहेंगे, मेरे प्रभु कैसे वन में रहेंगे। वो निरंतर वो यही करते रहते हैं, हाय मेरे प्रभु कैसे रहेंगे, उनको कब देखूंगा मैं, उनकी ऐसी अविचल भक्ति भी दी हुई है। किसकी है, भगवान शिव की, तो इसलिए साधारण भक्ति नहीं है इनकी, निषाद राजगुरु की। यही हुआ जब भरत जी मिलने आए इनसे, भगवान राम जी से मिलने के लिए भरत वहाँ से निकले तो इनको समाचार मिला कि उधर से बहुत बड़ी सेना आ रही है। इन्हें लगा कि भगवान राम पे आक्रमण करने के लिए कोई आ रहा है, तो इन्होंने पता है पूरी सब आक्रमण की तैयारी कर ली कि हम जो भी सेना होगी ना अयोध्या की उसको यहीं ख़त्म कर देंगे, हम राम तक पहुंचने नहीं देंगे अगर कोई राम को मारने के लिए इधर से जा रहा है तो। लेकिन वहाँ पे जब इन्हें पता चला कि ये तो भरत जी भगवान से मिलने के लिए, राज्य लौटाने के लिए आ रहे, तो इनको खेद हुआ, हाय मैं किन पे शक कर रहा था, इन भरत जी पे। और भरत जी जहाँ भगवान श्री राम जी सोए थे वहाँ लौटने लगे, वो उन पर अपना माथा टेक दिया उन्होंने कि यहाँ भगवान के चरण पड़े हैं, यहाँ भगवान के चरण धूली है, अपने माथे पे लगाने लगे। वो देखने लगे, आह क्या भक्ति है भरत जी की, उन्होंने भरत जी को बाहों में भर लिया। तो दोनों भाई ऐसे मिले, निषाद जी और भरत जी, जैसे दोनों भाई हों और दोनों भगवान के ऐसे भक्त, ये उनका मिलन हुआ। और निषाद जी बोले हैं, भरत जी हम भी आपके साथ ही चलेंगे भगवान से मिलने। और ये दोनों फिर पहुँचे, जब ये भगवान के पास पहुँचते हैं तो भगवान राम जैसे भरत को लिपट के मिले हैं ऐसे ही निषाद राज जी को लिपट के मिले हैं। और बहुत ज़्यादा डिटेल में ना बता के हम यही कि जब ये वहाँ से निकल रहे थे, निकलते हुए जैसे भरत जी की अश्रुधारा थी, निषाद राज की भी अश्रुधारा वैसी ही बह रही थी कि इन भगवान को कब देखेंगे हम, 14 साल बाद क्या दिखाई देंगे भगवान, 14 साल बाद क्या होगा, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या भगवान को देख पाएंगे हम। और ये वापस आ जाते हैं और निषाद राज जी दिन रात रोते हैं और रोते रोते ये कहते हैं उनकी आंखों से खून शुरू हो जाता है बहना, आंसू की जगह खून निकलने लगता है, आंसू सूख जाते हैं खून बहता है, आंखें खराब हो जाती है। उनकी आंखों पे पट्टी बांध के जब उनका इलाज किया जाता है तो इलाज के बाद जब आंखें ठीक हो जाती हैं उनकी, उसके बाद भी वो पट्टी नहीं खोलते। वो बोले हम इन आंखों से किसी दुनिया को नहीं देखेंगे, हमारे राम ही नहीं है तो हम किसी को नहीं देखेंगे, जब कभी राम आएंगे यदि आए तो हम अपनी पट्टी खोल देंगे, ना आए तो हम इस दुनिया को देखेंगे ही नहीं। 14 वर्ष के बाद वनवास पूरा करने के बाद भगवान जी आते हैं, सब बोलते हैं कि भगवान आ गए हैं, ये नहीं मानते। जब भगवान उनका स्पर्श करते हैं स्वयं छाती से लगाते हैं कि देख मैं आ गया हूँ, गू अपनी आंखें खोल, वो भगवान का स्पर्श करते हैं, भगवान के शरीर की सुगंध लेते हैं, तब वो आंखें खोलते हैं। आंखें खोलते हैं तो उनको भगवान दिखते हैं, वो रोते हैं और भगवान का छोड़ते नहीं हैं भगवान को पकड़ के, ऐसा प्रेम है इस निषाद राज गू का। और उन्हीं की जो माँ है वो भी भगवान से कहती हैं कि आप एक दो दिन हमें सेवा का मौका दें, पर भगवान राम कहते हैं नहीं, आज ही पहुँचना हमें आवश्यक है क्योंकि भरत जी वहाँ नहीं तो समाधि ले लेंगे, हम आज नहीं पहुँचे तो आज का समय है। तो ये वहाँ पहुँचते हैं और इनको कहते हैं इनकी मैया को कि हम आपको फिर कभी मिलेंगे। और वो फिर मिले हैं जब द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण जी बने तो वो भिलनी बन के आई थी जो भगवान को फ्रूट्स बेचती है और फ्रूट्स भगवान उनसे खरीदते हैं और वो लेते हैं, गोद में बैठती है, उनको पूरा मिलन का पूरा अवसर देते हैं अपनी भक्ति का भगवान श्री कृष्ण अवतार में उनको। तो ऐसे भगवान के भक्त हैं, भगवान जिनको अपनी भक्ति देते हैं वो ऐसे ही देते हैं। तो निषाद राज गुरु जैसे भक्तों के चरणों में प्रणाम है, भगवान श्री राम जी जिनके इष्ट हैं ऐसे निषाद राज को प्रणाम है, उनकी भक्ति को प्रणाम है, उनकी चरण धूलि को प्रणाम है, ऐसे भक्तों की चरण धूलि हमें प्राप्त होती रहे। बोलो निषाद राज भक्त की जय, भगवान के सभी भक्तों की जय, श्री भक्तमाल की जय, राधे राधे।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।